हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका की बात से सहमत होते हुए करण ने भी सिर हिलाया और शिविका को तुरंत अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल गया। शिविका उसे रोकना चाहती थी, परंतु समय और परिस्थिति को देखते हुए उसने समय नष्ट नहीं किया और न ही कोई बहस की। वे दोनों बाहर निकले जहां ड्राइवर कार के आसपास ही खड़ा था। करण ने उसे आवाज़ लगाई और तुरंत कार स्टार्ट करने को कहा। शिविका और करण हॉस्पिटल के रास्ते में थे। जतिन ने शिविका के नंबर पर हॉस्पिटल का नाम और पता भेज दिया था, जो उनके ऑफिस के सबसे करीब था। शिविका ने ड्राइवर से वहीं चलने को कहा। ऋषभ के बारे में फ़ोन पर सुनकर शिविका इतनी परेशान और घबरा गई थी कि वो घर पर अपने पिता या किसी को भी बताना भूल गई। उनके जाते ही शिविका के पिता उनके कमरे में आए, ये सोचकर कि उन्हें शिविका वहां करण के साथ काम करती या बात करती हुई मिलेगी। शिविका के पिता जब अपनी ऑटोमैटिक व्हीलचेयर पर बैठे उस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था, लाइट्स और एसी सब कुछ चालू थे और सारी फाइलें लैपटॉप वहीं बेड पर खुला पड़ा था, लेकिन शिविका या करण दोनों में से कोई भी वहां नज़र नहीं आ रहा था। शिविका के पिता ने उन दोनों को आवाज़ भी लगाई, लेकिन कमरे में कोई होता तो उनकी आवाज़ का जवाब देता। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वे समझ गए कि वहां कोई नहीं है और वापस चले गए। फिर उन्होंने अपनी केयरटेकर को बुलाया और उससे अपना मोबाइल फ़ोन लाने को कहा। उनकी केयरटेकर उनका मोबाइल फ़ोन लाई और मिस्टर खन्ना ने शिविका का नंबर डायल किया, जो कि व्यस्त बता रहा था, क्योंकि उस वक्त वो कार के ड्राइवर से फ़ोन पर बात कर रही थी। कुछ देर बाद शिविका और करण हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इस बार शिविका ने खुद को करण की गोद में नहीं उठाने दिया और वो बस उसका हाथ पकड़कर एक पैर से धीरे धीरे चल रही थी। इसमें उसे हॉस्पिटल के गेट से रिसेप्शन तक आने में काफ़ी देर लग गई। करण उसके धीरे धीरे चलने से चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ रहा था कि अगर हॉस्पिटल में भी वो उसे गोद में उठाकर चलेगा तो बाकी लोग उन्हें देखेंगे और शिविका के साथ साथ वो भी शर्मिंदा होगा। इसलिए उसने भी हॉस्पिटल में उसे गोद में उठाने की बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। रिसेप्शन से पता करने के बाद वे कमरे की ओर आने लगे और वहां दिव्या और जतिन खड़े हुए नजर आए। शिविका को लंगड़ाता हुआ देख दोनों ही उसकी मदद करने के लिए आगे आए, जबकि करण पहले ही उसकी मदद कर रहा था। लेकिन तभी करण का मोबाइल फ़ोन बजा और उसने देखा कि शिविका के पिता का फ़ोन कॉल है। फ़ोन आते ही करण ने शिविका को उन दोनों के साथ जाने दिया और शिविका जतिन और दिव्या के साथ आगे चली गई, लेकिन करण वहीं रुककर शिविका के पिता से फ़ोन पर बात करने लगा। करण ने जैसे ही कॉल सेव करके मोबाइल फ़ोन रखा और वो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही दूसरी तरफ से उसे शिविका के पिता की परेशान आवाज़ सुनाई दी। करण बेटा, कहाँ हो तुम लोग? तुम दोनों साथ तो होना और तुम ठीक तो होना? इस तरह अचानक कहाँ चले गए? तुम दोनों तो यहाँ घर पर ही काम कर रहे थे ना? उन्हें शांत करने के लिए करण ने तुरंत कहा, हेलो अंकल, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, हम दोनों यहाँ साथ में ही हैं और अभी हम हॉस्पिटल। करण उन्हें हॉस्पिटल वाली बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निकल गई क्योंकि उसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता था और ना ही कोई बात छुपाना। करण के मुंह से हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर मिस्टर खन्ना और भी परेशान हो गए और उन्होंने परेशान होते हुए पूछा, हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ ऐसा? और तुम दोनों ठीक तो हो ना? शिविका का पैर क्या उसमें ज्यादा तकलीफ है जो तुम्हें ऐसे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा? करण ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, आप प्लीज़ ज़्यादा फ़िक्र मत करिए, मैंने कहा ना, सब ठीक है, हम यहाँ ऋषभ को देखने आए हैं, उसे शायद तेज़ बुखार है जिसकी वजह से वो ऑफिस में बेहोश हो गया, तो ऑफिस के लोगों ने उसे हॉस्पिटल लाया है और शिविका के पास कॉल आया तो वो अकेली नहीं आ सकती थी पैर की वजह से, इसलिए मैं उसके साथ आया हूँ। मिस्टर खन्ना भले ही ऋषभ को हमेशा किसी न किसी बात को लेकर डांटते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उसके हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात सुनकर उन्होंने घबराते हुए पूछा, ऋषभ को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? वह इस तरह से बेहोश कैसे हो सकता है? करण, तुम शिविका के साथ ही रहना, वह अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसे कुछ भी तकलीफ हुई तो वो देख नहीं पाएगी। करण ने बहुत ही आश्वस्त होकर कहा, हाँ अंकल, मुझे ये सब कुछ पता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके साथ ही हूँ और उन दोनों को साथ लेकर ही घर वापस आऊँगा, आप बस अपना ख्याल रखिए जिससे कि आपकी तबीयत ठीक रहे। शिविका के पिता से इतनी बात करके उन्हें सब कुछ बता देने के बाद करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उस तरफ आया। शिविका पहले ही उस कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि वहां पर ऑफिस के काफी सारे लोग जमा हैं, जिनमें से सभी को वो पहचानती है सिर्फ एक लड़के को छोड़कर, लेकिन वो भी उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। लेकिन शिविका को इतना तो पता था कि वो लड़का उसके ऑफिस में काम नहीं करता। शिविका पैर की वजह से ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो दिव्या ने उसे साइड में लगी बेंच पर बैठने को कहा। शिविका काफी ज्यादा टेंशन में थी कि ऋषभ को अब तक होश क्यों नहीं आया, लेकिन फिर भी वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसके पास बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि वो लड़का भी उसी की तरह परेशान है और बार बार दरवाजे से अंदर देखते हुए वो गैलरी में इधर उधर चल रहा है। इसके अलावा शिविका ने दूसरी ओर देखा, वह करण के आने का इंतजार कर रही थी और उसने अपने मन में कहा, ये करण कहाँ रह गया? किसका फोन कॉल था इस वक्त और वो अब तक नहीं आया? कहीं वापस तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, वो मुझे इस तरह छोड़कर वापस तो नहीं जाएगा। शिविका को पता नहीं क्यों करण पर इतना ज्यादा भरोसा था कि करण ऐसी हालत में उसे वहां अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और तभी कुछ मिनट बाद उसे करण अपनी तरफ आता हुआ दिखा, तो शिविका ने थोड़ी चैन की सांस ली। करण भी वहां आया और उसने सब लोगों पर एक नज़र डाली, लेकिन उसे समर भी वहां उन लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आया, तो उसे समझ नहीं आया कि समर वहां क्या कर रहा है। और समर को वहां देखकर करण का ध्यान शिविका से बिल्कुल हट गया और वो समर की ओर बढ़ते हुए बोला, समर तुम यहां क्या कर रहे हो? करण की आवाज़ सुनकर समर ने भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसे भी अपने भाई के इस तरह यहां होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। समर ने उतनी ही हैरानी के साथ पूछा, करण भाई आप, मैं तो यहाँ उसके साथ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप ऋषभ को जानते हैं? करण ने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ बिल्कुल जानता हूँ और उसके लिए ही तो यहाँ आया हूँ, लेकिन तुमने नहीं बताया, उल्टा तुम मुझसे सवाल कर रहे हो समर। अपनी बात बोलते हुए करण आगे समर की ओर ही आ गया और उससे बात करने लगा। समर ने भी अपने मन में चल रही बात करण से कही, हाँ भाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऋषभ को जानते होंगे। एक मिनट, कहीं आप उसके ऑफिस में ही तो काम नहीं करते? वह आपका बॉस है क्या? नहीं, आपके बॉस तो शायद कोई लड़की। करण ने थोड़ा सा सोचते हुए सवाल किया, अरे अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है समर, लेकिन ऋषभ से तुम कहाँ मिले? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वो सगाई के वक्त भी वहाँ पर नहीं था, तो उस दिन तो तुम उससे नहीं मिले होगे। इन सब में उसने सगाई का जिक्र कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे लोग हैरानी और भ्रम के मिले जुले भाव के साथ सवालिया नजरों से करण की तरफ ही देखने लगे। बाकी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा।
लेकिन दिव्या से नहीं रहा गया और उसने सीधा ही करण से सवाल किया, किसकी सगाई? ये सब करण क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? और ऋषभ, भला वो क्यों आएगा तुम्हारी सगाई में?
करण जल्दी से बात संभालते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरी सगाई नहीं, एक्चुअली एक कॉमन फ्रेंड की सगाई पर गया था मैं अपने भाई के साथ, और ऋषभ भी शायद वहां पर था। मेरा मतलब है ऋषभ सर।
जतिन ने भी सवाल किया, अच्छा तो तुम दोनों क्या सगे भाई हो?
करण ने सिर हिलाकर कहा, हाँ।
जतिन और दिव्या के साथ ही वहां खड़ी पूजा ने भी सवाल किया, लेकिन तुम्हारा भाई ऋषभ सर को कैसे जानता है? उन सभी लोगों के सवाल सुनकर शिविका भी बहुत ज्यादा घबरा गई है और उसे लग रहा है कि कहीं उसके और करण के रिश्ते का सच भी ऐसी सिचुएशन में सबके सामने ना आ जाए। बाकी सबके सवाल सुनकर करण थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से बात संभाली। लेकिन समर उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो गया है। वहीं शिविका ने भी बात खत्म होते ही राहत की सांस ली, क्योंकि सगाई वाली बात सुनकर वो भी थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन वहां ऑफिस के लोगों के होने की वजह से उसने इतना रिएक्ट नहीं किया। समर को अपने सामने उस तरह कंफ्यूज खड़ा देखकर करण जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे उन सब लोगों से दूर गैलरी के कोने पर ले गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि समर कोई ऐसा सवाल करे जिसे सुनकर ऑफिस के सारे लोगों को फिर से करण पर शक हो। खासकर दिव्या उसे कुछ ज्यादा ही नोटिस करती है। वहां मौजूद सारे लोग एक बार करण और समर की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर वहां से बाहर निकल कर आते हैं। तो शिविका सबसे पहले डॉक्टर को रोकते हुए पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे भाई को? पिछले एक घंटे से उसका इलाज चल रहा है, वो ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने रुककर शिविका की तरफ एक नज़र देखा और फिर उसे पूरी बात समझाते हुए बताया,
घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग शायद उनका ध्यान नहीं रखते हैं। उन्होंने तो कल रात से कुछ खाया नहीं है और उन्हें बहुत तेज बुखार था। ऐसे में भी वो दवा लेकर आराम करने के बजाय शायद कहीं जा रहे थे, इसी वजह से ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल वो बेहोश हैं। होश में आने के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन कल तक अगर वो ठीक हो गए तो आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। क्रमशः